ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी आप सभी प्यारे बाबा की याद में बैठे हुए बाबा से बातें कर रहे थे। हम आत्मा इस भ्रकुटी कुकुटिया में बैठकर कुटिया में किस लिए बैठा जाता है? कुटिया में बैठते हैं बाबा से बातें करने के लिए। बाबा की कुटिया में जाकर हम बाबा से बातें करते हैं। ऐसे ही ये आत्मा भी इस प्रकृति की कुटिया में बैठ करके अपने आप से बातें करते हैं। प्यारे बाबा ने हम सबको अपने आप से बातें करना सिखाया है। तो अपने से हम क्या बातें करते हैं? अपने से बातें करनी होती है तो जब अपने से बातें करते हैं तो बातें करते करते दो बातें करते हैं। एक तो ये बातें करते हैं कि हमें अब क्या करना है, और दूसरा हमारा बाबा हमें क्या कहता है। हम जब से बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने हैं तब से बाबा ने हम बच्चों को दर्पण दिया है, और उस दर्पण में हम सदैव अपने को देखते रहते हैं। दुनिया में भी दर्पण देखने की हर एक के अंदर चाह होती है और देखता रहता है। दर्पण सामने आए और वो चेहरा ना देखे ऐसा हो नहीं सकता है, न चाहते हुए दर्पण खींचता है ना? खींचता है ना दर्पण, न चाहेंगे तो भी दर्पण खींच लेता है। ऐसे ही बाबा ने हम सबको भी दर्पण दिया है, और दर्पण के अंदर हम सब अपने आप को देखते हैं। बाबा ने अपने आप को देखना सिखाया है। पहले दुनिया को देखते थे, दुनिया वालों को देखते थे, अब बाबा ने हम बच्चों को अपने आप को देखना कि अपने आप को देखो, अपने अंतर को झांको, और जब हम अपने आप को देखते हैं तो उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हमें अब क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, कितना किया है, कितना करना है, कितना कराना है, सब बातें आती ना। एक ही बात नहीं है, उसके अंदर हमने कितना किया, क्या किया, कितना कराना और कितना करना। हम ब्राह्मण बन करके अगर हम अपने दर्पण को नहीं देखते हैं तो हमारा आगे का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। पुरुषार्थ करने के लिए, पुरुषार्थ तभी चलता है जब हम अपने को देखते हैं, अपनी चेकिंग करते हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स जो होते हैं, अच्छे होशियार स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, कितनी पढ़ाई की है और कितनी अब करनी बाकी है, उनकी चेकिंग सदा चलती रहती है और उस चेकिंग के आधार से ही उनकी पढ़ाई चलती है। बाबा ने भी हम बच्चों को स्टूडेंट बनाया कि तुम बच्चे स्टूडेंट हो और तुम्हारी ये पढ़ाई है और इस पढ़ाई से तुम्हें ये पाना है। क्लियर दिया टीचर कि तुम्हें ये बनना है, ये ऑब्जेक्ट बाबा ने क्लियर दिया। जब तक एम ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है तब तक पुरुषार्थ नहीं हो सकता। भक्ति में भक्ति करते थे लेकिन एम ऑब्जेक्ट नहीं था, और एम ऑब्जेक्ट न होने के कारण जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को अपना बच्चा बनाने के साथ साथ हमको स्टूडेंट भी बनाया और रोज हम बच्चों को बाबा पढ़ाने आता है, पढ़ाई पढ़ा, और हम सब स्टूडेंट हैं, भगवान पढ़ा रहा है, भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट क्या है, वो सारा चित्र हमारी बुद्धि में क्लियर है। तो जब हमें ये स्मृति है कि हम स्टूडेंट हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमारा उसके ऊपर विशेष अटेंशन रहता है। पढ़ाई पढ़नी है, लक्ष्य बाबा ने दिया है, एम ऑब्जेक्ट बाबा ने दी है, अब उस एम ऑब्जेक्ट को हमको कितने मार्क्स से पास कर, 100 लेने हैं या कम लेने हैं, वो तो हमारे ऊपर है ना, पढ़ाई है। पावा ने कहा मैं तुमको राजा बनाने आया, फुल मार्क्स राजा। और फिर उसके बाद के जो भी है बात की। तो लक्ष्य बाबा ने हम सबको दिया और हम सभी उस लक्ष्य को लेकर के अगर चल रहे हैं तो हम पुरुषार्थ सहज रीति से कर सकते हैं। अगर लक्ष्य बुद्धि में नहीं है तो हमारा पुरुषार्थ जैसे चलना चाहिए वो पुरुषार्थ नहीं चलता है। तो बाबा के बनने के बाद जब हम पुरुषार्थी बाबा के बच्चे बनते हैं तो पुरुषार्थ के भी बाबा ने अर्थ सुनाए। एक पुरुषार्थी है तीव्र पुरुषार्थी, जो पुरुषार्थ में लगा रहता है, और एक पुरुषार्थी वो भी होता है जो गलतियां करते हुए अपने को छुड़ाने के लिए क्या बोलता है, हम पुरुषार्थी छुड़ाने के लिए बोलता है हम पुरुषार्थी। लेकिन बाबा ने पुरुषार्थ का जो अर्थ बताया है कि पुरुषार्थ माना तीव्र, जो पुरुषार्थ कर रहा है उसमें तीव्र वेग हो, तीव्रता, छुड़ाए नहीं है, आगे बढ़ता जाए। तो जब हम सभी बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, पुरुषार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, ब्राह्मण हैं, तो चलते चलते जीवन के अंदर कई प्रकार की हमारे अंदर विघ्न आते हैं। आज का टॉपिक है कि विघ्न और खुशनुमा जीवन। अनेक प्रकार की हमारे पास परीक्षाएं आती हैं, उन परीक्षाओं से पास होकर के हमें अपना खुशनुमा जीवन बनाना है। ये कायदा है कि पेपर के बिना क्लास चेंज नहीं होगा, है ना? पेपर के बिना चढ़ती कला नहीं होगी, आगे नहीं जा सकते। तो पेपर आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, उन परीक्षाओं को हम पास करते हुए आगे बढ़े। क्लास आगे बढ़ाने के लिए पेपर देना होगा। जब तक पेपर नहीं दिया है क्लास हमारा आगे नहीं बढ़ता। हम ये कहें ये समस्या क्यों आई है तो क्यों का क्या उत्तर है, हैं? क्यों का उत्तर है आगे बढ़ना है तो पेपर देना है। ओम शांति। तो हमारी बात चल रही थी कि ये ब्राह्मण जीवन जो हम सभी को शिव बाबा की तरफ से, परमात्मा की तरफ से गिफ्ट मिली, और इस जीवन के अंदर चलते चलते अनेक प्रकार के पेपर हमारे आते हैं, अनेक प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, पेपर आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, जिनको हमें पार करके अपने को संपन्न बनाना है। पेपर क्यों आता है ये क्वेश्चन नहीं है ना, परीक्षाएं क्यों आती हैं क्वेश्चन नहीं, विघ्न क्यों आते हैं क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्यों नहीं, क्योंकि आप स्टूडेंट, क्योंकि आप भगवान के बच्चे, स्टूडेंट हैं, पेपर पास करना है, भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चे कैसे सच्चे हैं, कैसे हैं, वो कसौटी है ना। बाबा भी कहता है कसौटी तो करेंगे ना है? आज एक मिट्टी का घड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो भी ठोक ठोक के लेते हैं। तो भगवान ने हम बच्चों को अपना बनाया है, हम ब्राह्मण बने हैं, भगवान के बच्चे बने हैं, तो हमारे जीवन के अंदर परीक्षाएं तो आएंगी, परेशानियां आएंगी, चुनौतियां आएंगी है ना। चुनौतियों के बिना जीवन नहीं है ना? उनको पार करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में खुशी होती है। एक ही लाइफ अगर हमारी चल रही है तो वो क्या लगेगा रोज रोटी सब्जी दाल खाएं तो कैसा लगेगा, बोर हो जाएंगे ना। तो क्या चाहिए, समोसा चाहिए, कचौड़ी चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, है या नहीं। ब्राह्मणों को चाहिए ना ब्रह्मा भोजन, तो अच्छा चाहिए है ना। तो ये हमारे लिए चुनौतियां है ना? जो भी पेपर आते हैं, विघ्न आते हैं, ये हमको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। और आगे बढ़ने का ही अगर हम लक्ष्य रख करके चलते हैं तो हम इन से पार हो सकते हैं। अभी चलते चलते हमारे पास परीक्षाएं कौन कौन सी आती है ब्राह्मण जीवन के अंदर, उसमें वैरायटी है ना, वैरायटी है। तन का भी पेपर आता है, मन का भी पेपर आता है, धन का भी पेपर आता है, संबंध का भी पेपर आता है, प्रकृति का भी पेपर आता है, साथियों का भी पेपर आता है, समाज का भी पेपर आता है। आते कि नहीं आते, तो इन सब पेपरों में से हमको क्या करना है पास। ये हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। देखो उस स्कूल या कॉलेज में जो भी परीक्षा होती है उसका पेपर लास्ट टाइम दिया जाता है क्वेश्चन, है ना। हमारे बाबा ने तो हमको क्वेश्चन पहले से लिख के दे दिए, मिल गए ना, तो हम तो तैयारी कर सकते हैं ना, पहले से ही पेपर क्वेश्चन पता है कि ये क्वेश्चन आने वाले है ना। गुप्त तो नहीं रखा है ना बाबा ने, बाप भले गुप्त है लेकिन हर बार प्रत्यक्ष करता है, है? भगवान बच्चों के लिए गुप्त नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई गुप्त नहीं है, बच्चों के लिए प्राप्ति गुप्त नहीं है, तो सब ओपन है। ये पेपर आएगा, मन का ऐसे आएगा, तन का ऐसे आएगा, धन का ऐसे आएगा, संबंध का ऐसे आएगा, ये सब पेपर आएगा। और हम रोज पेपर सुनते हैं, सुनते कि नहीं सुनते, क्वेश्चन सुनते ना रोज, आज ये आएगा, आज ये आएगा, आज ये आएगा। बाबा ने कहा चैलेंज किया, तन की बीमारी आएगी, मन की आएगी, धन की आएगी, संबंध की आएगी, जो नहीं आई है वो आएंगी, है? तब आएंगे ना पेपर हमारे, प्रकृति के भी आएंगे, वो सब बाबा ने एकदम क्लियर कर दिए। अब उन सब पेपरों में से हमको पास होने के लिए बाबा रोज हम बच्चों को मुरली के अंदर मार्गदर्शन देता है, क्वेश्चन भी देता है, आंसर भी देता है। ये क्वेश्चन ये आंसर, और देकर 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 आगे बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहा है। मन को तंदुरुस्त कैसे बनाना है, तन को तंदुरुस्त कैसे बनाना है, धन को कैसे सफल करना है, संबंधों को कैसे सफल करना है, संबंधों को सुख कैसे हमें निभाना है, बाबा ने ये नहीं कहा कि संबंध छोड़ने। सन्यासियों ने सिखाया संबंध छोड़ने है, कहा ना घर गृहस्थ में रह करके नहीं कर सकते, भगवान ने कहा घर गृहस्थ में रह करके कर सकते, चैलेंज। अच्छा, मन बड़ा चंचल है, मन का पेपर आता है तो कहा भाई मन बड़ा चंचल है, उन्होंने कह के छोड़ दिया। और बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, बच्चे मन का पेपर आता है तो मन को कंट्रोल करने के लिए रोज विधि सुनाता है, मन मेरे में लगाओ, मुझे याद करो, और याद कैसे करो वो भी युक्तियां सुना रहा है, है? भक्ति में युक्ति सुनाता है। भक्ति में क्या होता है, एक ही युक्ति है, भक्ति में एक ही युक्ति है बस। और बाबा हम बच्चों को याद की भिन्न भिन्न विधियां, ऐसे याद करो, स्वमान में रह के याद करो, प्राप्तियों से याद करो, है ना, संबंध से याद करो। कितनी याद सहज कर दी बाबा ने, भक्ति में मुश्किल की बाबा ने सहज की, है ना, याद सहज कर दी ना। तुम संबंध से प्यार करो, एक संबंध थोड़ी है मेरा, वहां एक है भक्त और भगवान का। हमारे सर्व संबंध है, बाप को याद करो, टीचर को याद करो, सतगुरु को याद करो, साजन को याद करो, दोस्त को याद करो, दिल का हाल दो ना, दिल का हाल लेने वाला दिल वाला बैठा है ना हमारा, प्रेम चाहिए साजन सजनी के रूप में। बाबा ने कहा आशिक माशिक बन जाओ, हम आशिक वो माशुक, वो बाप हम बच्चे, बच्चा है तो वर्षा है ना, वर्षा सबको प्यारा होता है या नहीं होता है, वर्षा सबको प्यारा होता है और वर्षा ही याद कराता है। तो बाबा से जो वर्षा मिलता है, बाबा हमारा वर्षा मिल रहा है, कितना दे रहा है, और वो भी गारंटी कहता है, कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारा कोई ली नहीं सकता। वहां तो दुनिया में क्या होगा, चार भाई होंगे तो बटेगा ना वर्षा। और यहां कोई की ताकत है जो मेरा ले ले, क्यों? क्योंकि भगवान के पास इतना है, वो सागर है, वो सबको समान देता है। वो क्या करता है, सबको समान दे रहा है। तुमको जितना चाहिए उतना ले लो, अथा है तुमको घड़ा भरना है तो घड़ा भरो, थैला भरना है तो थैला भरो, बोरी भरनी है तो बोरी भरो, तिजोरी भरनी है तो तिजोरी भरो, जो चाहिए भरो, आपके उठाने की ताकत चाहिए ना? तो उसमें हमारा बंटवारा नहीं है, बाप इतना दे रहा है, पढ़ाई भी इतनी पढ़ा रहा है। देखो भाई, पढ़ करके बाबा कहता मैं तुमको राजा बनाता हूं, तो बाबा हमको राजा बनाता है, बाबा कहते सब राजा बन जाओ। कई बार बाबा मुरली में नहीं कहते हैं कि भाई सारे राजा 108 में आ जाएंगे तो फिर देखो कितनी खुशी की बात। बाबा ने कही ना बच्चे, तुम पुरुषार्थ करो तो मैं लड़ियां लगा दूंगा, है ना, उसके पास अखूट है। तो बाबा हम बच्चों को सर्व संबंधों से प्राप्त कराए, तो फिर विघ्न कहां से आए, है प्राप्ति है ना हमको, हर प्रकार की प्राप्ति, खुला भंडार से बाबा दे रहा है। लेकिन हम आत्माएं बाबा से लेने में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। कमी क्यों करते हैं, क्या कारण होता है कमी करने का, अपनी ही कमजोरी, अपनी ही शक्तिहीनता, उसको बढ़ाए। आप सब भट्टी में किस लिए आए, भट्टी में क्यों आते हैं, रोज क्लास करते हो, रोज मुरली सुनते हो, रोज योग करते हो, रोज सेवा करते हो, लेकिन विशेष आते भाई हमको भट्टी में जाना है, हैं? किस लिए जाना है भट्टी में, किस लिए जाना है, हैं? फूल लेने के लिए, फूल लेने के लिए, है ना। और फूल लेने के लिए फिर भट्टी में तपेंगे तब तो गोल्डन बनेंगे ना, तो तपने के लिए आते हैं। तपते हैं तो आत्मा कंचन बन जाती, और कंचन बनेंगे तो फूल मिलेगा, फूल भरेगा। तो भट्टी में हम इसलिए बाबा के पास आते हैं, एक्स्ट्रा उशारत करते हैं कि हमारे अंदर वो भरे। तो बाबा हम बच्चों को इतना अथाह दे रहा है, जितनी समस्याएं, परीक्षाएं, पेपर, लेकिन उसके आगे हमें प्राप्ति की। हम सब क्या करते हैं, परीक्षाओं की गिनती करते, पेपर की गिनती करते। देखो कोई बात आती है ना, बात तो इतनी छोटी होती है ना, बात छोटी होती है। और बाबा कई बार कहता है बात को भी अक्कल होती है ना। बात आई है चली जाएगी, और हम उसको पकड़ लेते हैं, है ना, और पकड़ के फिर सोच 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 के उसको बड़ा कर देते। बात छोटी होती है, छोटी होती है ना, लेकिन उसको क्या करते हैं, सोच सोच के बड़ा कर देते। बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने क्या कहा बच्चे, बात आई पुलिस स्टॉप लगाओ, क्वेश्चन मार्क में। और जहां क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां समस्या है, क्वेश्चन खत्म नहीं होता। क्या क्वेश्चन, क्या, क्यों, कैसे, है ना, ऐसा वैसा ये वो। तो हम समस्या खुद खड़ी करते हैं, समस्याएं आती नहीं है, समस्याएं खुद ही खड़ी करते। देखो मन की समस्या क्यों आती, कोई बात में मन आया, मन में आई तो बात को सोच सोच के बड़ा कर देते। कोई पेपर और कोई आया, मान लो धन का भी पेपर आया, हा? तो बाबा बैठा है ना, सर्वशक्तिवान बाप मदद करने के लिए बैठा हुआ है ना। भगवान ने हम सबसे गारंटी ली हुई है ना। क्या गारंटी ली, गारंटी भगवान की याद है। देखो ये याद रखो तो भाग जाएगा धन का पेपर। किसने वायदा किया, स्वयं भगवान ने हमसे वायदा किया है, बच्चे अंत तक मैं तुमको दाल रोटी खिलाऊंगा। और किसका वायदा है, भगवान का वायदा है ना। तो हम ये भूल जाते हैं, फिर उसमें हाँ ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब क्या करें, कैसे होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे वैसे। उससे वायदा भूल जाता है। संबंधों का भी पेपर आते हैं, है? तो बाबा ने तो कहा है उनको भी बाबा के बच्चे समझो, है ना। वैरायटी संस्कार है, वैरायटी स्वभाव है, हमारा कर्मों का हिसाब किताब है। अब वो चुक तू किए बिना तो कैसे होगा, है? और उसके लिए भी बाबा ने हमको युक्तियां दी। संबंधों में भी अगर कुछ होता है तो उसके लिए बाबा ने क्या युक्ति दी, बच्चे उनको शुभ भावना दो, वो आपकी शुभ भावना से वो परिवर्तन हो जाए। आपकी शुभ भावना में इतनी ताकत है, आपके योग में इतनी ताकत है, वो परिवर्तन हो जाएगी। हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, कई हमारी बांधेली माताएं होती हैं, है? होती है ना, जिनके पति नहीं चलते, कितना परेशान करते, कितना तंग करते, लेकिन आखिर विजय उनकी होती है। वो विजय किस आधार से होती है? शुभ भावना से। शुभ भावना से वो उनको वो वाइब्रेशन देती है, तो विजय हो जाती है। हमने तो ऐसे ऐसे अनुभव देखे हैं बांधेलियों के, हा? कि जो असंभव बातें होती थी वो संभव हो गई। नाम सुनने का तैयार नहीं है ब्रह्मा कुमार का, बाबा का नाम सुनने, वो परिवर्तन हो गए। किससे? शुभ भावना। और हमारी माता ऐसी अनपढ़, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, बस एक ही बुद्धि में बैठ गई, मैं और मेरा बाबा, बस उससे ही वो पास हो जाती। मैं एक बांधेली का अनुभव सुनाती। हम शुरू शुरू में ज्ञान में आए तो हमारे पास एक माता आती थी, मैं ज्ञान मथुरा से लिया, वहां एक बांधेली माता आती थी। उस वो अनपढ़ थी, लिखना पढ़ना नहीं आता था, और ज्ञान में हाई बाबा की बच्ची बनी, बुद्धि में एक ही बात बैठी, मैं आत्मा हूं, मेरा शिव बाबा पिता, मैं इस शरीर से न्यारी हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है, बस। दूसरा उसको कोई ज्ञान नहीं था, इतना निश्चय उसको था, क्योंकि बिचारी को मुरली सुनने मिलती नहीं थी, आई नहीं पाती थी, तो और बुद्धि में तो ज्ञान इतना नहीं था, बस इतना ज्ञान था कि मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा है, भगवान आया है, मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे पवित्र रहना है, पवित्र जीवन बनाना, मुझे अब घर जाना है। जो मूल ज्ञान था वो बुद्धि में था। अब आप सोचेंगे बांधेली है तो घर में झगड़ा पवित्रता पर ही होगा, रोज उसका पति मारता और सेंटर पर आने नहीं देता, तो भी वो दिन में कभी वो चला जाता था दुकान पे, तो दिन में कभी भाग भाग के ऐसे दौड़ दौड़ के आती थी बेचारी, बाबा के घर में आई, मैं आत्मा, बाबा की बच्ची, बाबा की बच्ची, 5 मिनट बैठी और भागी। रोज मारता उसको पति। हमने प्रैक्टिकल में देखा, उसको इतनी मार पड़ती थी, दिखाती थी आकर कि दीदी देखो मेरे को आज ये मारा, ये किया, वो किया। तो जब वो मारता था ना उसको, तो वो पता क्या बोलती थी, मार ले, मैं तो आत्मा हूं, तू शरीर को मार रहा है, मेरे को मार के देख। सुना? तो वो ऐसे बोलती, मेरे को मार के देख, मैं तो आत्मा हूं, तू शरीर को मार रहा है, मार ले इसको जितना मारना है। और ऐसे करते करते अभी क्या होता है, सामने वो बोलेगी तो उसके पति को और जोश चढ़ेगा, होता है या नहीं होता है? तो एक दिन उसने क्या किया कि पहले तो जमाने में वो सिंगड़ी जलाते थे कोयले वाली, तो उसने ये सिंगड़ी में से, अंगीठी में से कोयला निकाला और उसके हाथ पे रख दिया, ला देख तू आत्मा है, तेरा बाबा कैसे बचाता है। आप नहीं मानेंगे, उसका हाथ नहीं जला, कोयला हाथ में रखा, निशान बने। अब सोचे कोयला रखा है जला हुआ तो हाथ की हालत क्या होगी, वो भी निशान इतना कि पता चले कि इस पे हाथ पे रखा गया था। वो आके सुनाती है, दीदी मेरे को कोई भी जलन नहीं। उसके बाद उसका पति मान गया। मान गया क्यों? वो ये हिम्मत से बोलती थी ना, मैं आत्मा हूं, तू कर ले जो करना है मेरे को, ये शरीर है मेरा, तू इसको मारेगा, इसको कर सकता है, मेरे को नहीं कर सकता, भगवान मेरा सा, ये निश्चय है। इस निश्चय से विजय। बाबा हम बच्चों को वही तो कहता है, निश्चय हो, नशा हो। शुरू में हमारी दादियों ने क्या किया, अनुभव सुनो ना, कितनी मारे खाई हैं, और मांस खा के आखिर विजयी बन गई। तो विजय किसकी है? बाबा हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है, इसलिए हमारी विजय है। तो पेपर तो आएंगे, लेकिन पेपर में पास होने की बाबा ने शक्ति हमें। हम रोज योग क्यों करते बोलो, क्या किया हमने योग करके? हम कहते हम योग लगाते, 2 घंटे बैठे 3 घंटे बैठे, क्या किया? और पेपर आया तो क्या हो गया? ये क्यों आया? तो क्या किया हमने? योग नहीं लगाया ना, प्रूफ है। अगर योग लगाया है तो पेपर आएगा ही नहीं, और आएगा तो पहले पता चलेगा, है ना? आएगा तो पहले पता चलेगा कि ये पेपर आने वाला, इसलिए हम क्या हो जाएंगे? अलर्ट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो टच होगा ना, परीक्षाएं तो होंगी, पेपर तो आएंगे हमारे, चुनौतियां तो आएंगी। क्यों? भगवान का हाथ पकड़ा है। लेकिन हमको पहले से ही हमारे योग की ताकत इतनी है, बुद्धि की लाइन क्लियर है, तो हमें टच होगा। हम योग लगाते, इसीलिए तो लगाते, आत्मा शक्तिशाली बने उन विघ्नों को पार करने के लिए। और हमारे योग के अंदर इतनी ताकत है कि अब इससे जो चाहे कर सकते, तन का रोग मिटा सकते हैं, मन का रोग मिटा सकते हैं, धन की कमी मिटा सकते हैं, संबंधों का सुख भर सकते हैं। यहां तक मैं आपको बताऊं, जादू टोना को भी खत्म कर सकते, भूतों को भी भगा सकते। उसका एक उदाहरण सुनाती हूं, योग की ताकत क्या है। हम कहते हैं ना, योग हमारा, योग के अंदर इतनी पावर है। एक बहन थी, डॉक्टर थी, उसको क्या हुआ, ऐसे कोई जल जाते ना कोई चीज, जैसे मो अगरबत्ती जलाई और उससे कोई ऐसे जलाए है, तो ऐसे उसको शरीर में छाले पड़ते, अचानक छाले 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 पड़ते। अब उसने बहुत सब कुछ टेस्ट कराया, और उसमें वो जलन कैसी होती, जैसे कि जल गया हो उसकी जलन। तो उसने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, ठीक नहीं। आखिर परेशान हो करके वो मधुबन आई, आके दादी को सुनाया, प्रकाशमणि दादी। ये मैं उस समय मैं प्रैक्टिकल का अनुभव सुना रही, दादी को सुनाया, दादी ऐसे ऐसे हो रहा है। दादी ने कहा अच्छा, सुना दादी ने। फिर दादी ने उसको कहा कि एक बात कहूं, तुम करोगी? तो कहा दादी जो कहोगी वो करूंगी, मेरे को इसे छूटना है, मैं परेशान हो गई हूं, मेरा कोई इलाज ही नहीं। तो कहा ठीक है, तुम एक हफ्ता योग भट्टी में बैठ जाओ और बाबा के कमरे में, यही बाबा का कमरा, 2:30 बजे उठ के बाबा के कमरे में जाके बैठो, योग तपस्या करो 4 घंटा। उसने कहा ठीक है। अब उठ करके तपस्या शुरू कर दी उसने। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, बाबा के पास बैठी, रोज दादी को समाचार सुनाने जाती। 4th-5th दिन जो बाबा का चित्र था उसको वो बाबा का चित्र नहीं दिखाई दिया, तो ना बाबा के फेस में दूसरा फेस दिखाई देता। पहले दिन वो बोली बाबा क्यों नहीं है यहां, फिर दूसरे दिन फिर धीरे धीरे वो पिक्चर क्लियर हुआ। तो उसने जाके दादी को सुनाया कि दादी मेरे को बाबा नहीं दिखता है, लेकिन पता नहीं ये चित्र दिखता है। तो दादी ने कहा तुम याद करो कि ये फोटो किसका है। तो उसने फिर याद किया तो कहा दादी ये एक बहन पेशेंट थी जो मेरे पास आई थी और इसका मैंने इलाज किया था, है? और इलाज जब मैंने किया तो वो खुश हो करके मेरे को उसने एक डब्बी दी थी और उस डब्बी में पता नहीं क्या कस्तूरी ऐसे बोलता उसको रखा और उसको ये कहा कि तुम ये डब्बी अपने पास संभाल के रखना। तो मैंने वो संभाल के मेरे पास रखी और उसने फिर मेरे से मेरा फोटो मांगा, तो मैंने वो फोटो उसको दे दिया। अब वो जो लेडीज थी वो तांत्रिक थी ना? तो वो जब फोटो ले गई तो वो तांत्रिक का प्रयोग करती थी और प्रयोग करती थी वो अगरबत्ती से उसको ऐसे निशान बनाती फोटो पर। अब वो उसके फोटो पर जहां वो निशान बनाती थी वो यहां उसकी बॉडी पर आता है। ये कौन डॉक्टर ढूंढेगा इसको? शिव बाबा डॉक्टर ढूंढता है। तो जब उसको बताया तो दादी को उसने बताया फिर सारा। तो दादी ने कहा अच्छा ठीक है तुम, या दादी ने पूछा याद करो तुम, उसने याद किया फिर सब उसको याद आया। तो दादी ने कहा वो डब्बी को तुम जाके फेंक दो समुद्र में डाल दे। तो उसने वो डाल दी, उसकी बीमारी खत्म हो गई। किससे हुई? किससे हुई? योग से। तो हमारा योग क्या करता है? हमारे योग के अंदर इतनी ताकत है, विघ्न आएंगे लेकिन इतना विश्वास चाहिए, इतना निश्चय चाहिए कि कैसा भी आए अगर हम निश्चय बुद्धि है तो बाबा की मदद मिलती, बुद्धि की लाइन क्लियर होती है। क्या होता है, कोई भी पेपर आए, कैसी भी परीक्षा आएंगी, वो तो ये नहीं कहेंगे नहीं आएंगी, तो बाबा ने कहा है माया आएगी, रोज कहता है माया पेपर लेने आएगी, प्रकृति पेपर लेने आएगी, संबंधी पेपर लेने आएंगे, साथी पेपर लेने आएंगे, तो रोज कहता है ये हमारा पेपर है। लेकिन हमारे पास बाबा ने हमको इतना साधन दिया है, अगर हम योग युक्त है, हमारी बुद्धि की लाइन बाबा से क्लियर है, तो हमें हर बात टचिंग होती, और टचिंग होती है तो इससे समझो कि मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है। तो अपनी लाइन को हमें क्लियर करना है, लाइन को क्लियर करना है, तो बाबा ने हमको हर परिस्थिति में पास होने का, ये हमारा योग ताकत है। बाकी तो बाबा रोज मुरलियों के अंदर भी हमको हर एक प्रकार की परिस्थिति को पास करने का मार्गदर्शन देता है। अगर हम मुरली को अटेंशन से पढ़ते तो हमें रोज मार्गदर्शन मिलेगा। कोई भी बात आती है हम बाबा के आगे रखे, बाबा उसका उत्तर देगा, देगा या नहीं देगा, अनुभव है ना ये सभी को बाबा के रखो, किसी को नहीं सुनाओ, बाबा को सुनाओ। दूसरों को सुनाने से तो और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, हाँ अगर सुनानी है, बड़े हैं जिनसे हमको मार्गदर्शन लेना है उनसे हम ले सकते, बाकी तो बाबा ने हमको हथियार इतना दे दिया है, बाबा के पास बैठो, बाबा अपने आप टच करेगा कि बच्चे ये परीक्षा आ रही है इसमें पास हो जाओ, ये पेपर आने वाला है, आने वाला होगा वो भी टच होगा। इतनी हमको अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है, बुद्धि की लाइन क्लियर है और हमारे सामने देखो प्राप्ति भी क्लियर है ना, क्या दे रहा है बाबा ने, हमको क्या किया है, जीवन हमारी क्या बाबा ने बनाई है, अपनी जीवन को तो देखो क्या थी वो सोचो। आज से जब से हम बाबा के बने, उससे पहले की लाइफ और अब की लाइफ कितनी श्रेष्ठ बना दी बाबा ने, बाबा हम बच्चों को हाँ क्या दे रहा है, कितनी प्राप्ति है, स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहा है, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, हमारी पढ़ाई भगवान पढ़ा रहा है, पालना भगवान कर रहा है, अनेक खजानों से भरपूर भगवान कर रहा है, भगवान ने हमको अपना बना लिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है, और हमने भगवान को पहचान लिया इससे बड़ा सौभाग्य क्या है हमारे लिए, ये भी हम भी भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य को भी देखो, अपने ऊपर भी नाश रखो, जैसे बाबा को नाश था ना, मैं भगवान का हूं, भगवान का रथ हूं, मैं ये बनने वाला हूं, बाबा को लक्ष्मी याद था, नशा था बाबा को, सिर्फ याद ही नहीं था लेकिन नशा था, उतना नशा अगर हम बच्चों में आ जाए तो खुशी में ही झूमते रहे, शराबी शराब पीकर नशे में कैसे घूमता है, ऐसे हम घूमते हैं, रोज बाबा मुरली में नशा चढ़ाता है तो भी नहीं चढ़ता, मुरली सुने हाँ सुन ली चले हो गया काम, वो नशा चाहिए, वो दिखना चाहिए, बाबा बाबा कहते लेकिन बाबा बाबा मुख से निकलता है, एक बार बाबा ने कहा बच्चे हजार बार बाबा निकलना चाहिए मुख से, दिन में कितनी बार मिल पाता है, भगवान के बच्चे कितनी बार याद आता है, भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा है कितनी बार याद आता है, हम ये बनने वाले कितनी बार याद आता है, हम कहाँ जाने वाले कितनी बार याद आता है, कितनी बार याद आता है, कभी गिनती करो। तो प्राप्ति को भी देखो, क्या बाबा दे रहा है, क्या से बाबा ने हम बच्चों को क्या बना दिया, कितना उच्च बनाया है। हम भगवान के बच्चे, बस यही नशा सदैव रखेंगे तो कैसे भी पेपर हमारे सामने आएंगे वो सब पेपर पास हो, पास होना है सबको, है ना। तो बाबा को साथ रख करके है, कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी पेपर आए, बस बाबा मेरा साथी। कौन बनाए, जीवन साथी बनाए मेरा, है ना। तो जीवन साथी तो सदैव याद रहता है कि नहीं रहता है, है? तो जीवन का साथी बनाया होगा तो वो याद रहेगा, है? तो अपना जीवन का साथी बना है और हमें क्या बना रहा है, क्या दे रहा है, यह स्मृति हमें सहज पुरुषार्थ भी कराएगी और अनेक प्रकार की समस्याओं से भी हमको पार कर देगी। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी के पास ऐसे अनुभवों की कहानियों की खान है बहुत बहुत, और आप वो छोटी सी आयु में, 13 साल की आयु में तो सेंटर पर रहने लग गए थे। क्या सेवा करते थे दीदी आप 13 साल की उम्र में आके? आप सोचिए कि उस वक्त माता पिता के साथ आप ज्ञान में आए, जो दीदी ने बताया मथुरा से, और वर्तमान समय उस वक्त जब आके बाबा के घर जो सेवा मिलती है बड़ी खुशी से नशे से करते हैं, क्या उस वक्त सोचा था कि निर्मला दीदी के बाद आपको इतना बड़ा चांस हमेशा हेडक्वार्टर में रहकर, ज्ञान सरोवर में रहकर ये सब व्यवस्था संचालन संभालने का मौका मिलेगा? ये ड्रामा की उस वक्त गहराई में था जो आपका इतना सुंदर पार्ट खुला। हम आदरणीय प्रभा दीदी का दिल जान से, बहुत दिल से अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यहाँ ज्ञान सरोवर में आने से पहले भी और अभी भी आप झाड़ेश्वर भरूच सब जोन के आप प्रभारी रहे हैं। लगभग 17-20 सेंटर्स और अनेक गीता पाठशालाएं, वो सबका आप कुशल संचालन करते रहे और अब भी कर रहे हैं। अब दोनों तरफ ही आप संभालते हैं, तो अधिकतर सुदेश दीदी विदेश में होते हैं तो आप ही यहाँ रहकर ज्ञान सरोवर में सब संभालते हैं। बहुत सरल चित, बहुत सहज स्वभाव, आपके साथ सभी रहने वाले बहुत खुश और संतुष्ट हैं। तो आज का विषय निर्विघ्न जीवन, खुशनुमा जीवन, यह आपने कितना अच्छे से सब तरह के उदाहरण देकर क्लियर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। और हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय ज्ञान सरोवर में रहते हुए भी आप इसके अतिरिक्त भी किसी, कौन से विंग के बताया, एजुकेशन विंग के आप यहाँ गुजरात जोन के कोऑर्डिनेटर हैं और वहाँ सब तरह की सेवाएं आप संभालते हैं। इतनी बहनें भाई जो भी आपके साथ रहते हैं, जिनसे हमारा भी मिलना हुआ, बहुत बहुत दिल से आपकी प्रशंसा करते हैं, ज्ञान सरोवर के भाई बहन भी। तो इतना अच्छा लगता है आपसे मिलकर, तो हर भट्टी में आपकी क्लास करने का, सुनने का मौका मिलता है इन सभी उदाहरणों और इन सभी अनुभवों के साथ। तो हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं।
मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।